परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
तो परमात्मा ने बुद्धि दी जीव को, ये ऐसे इंटरनेट सिस्टम और ये मीडिया चैनल्स, प्रोजेक्टर, डीवीडी, सीडी, मोबाइल, चिप, ये मेमोरी कार्ड बनाए दाता ने बनवाए। अब इसमें ठीक है, जो बकवाद करने वाले वो करते रहेंगे, बकवाद कर लेंगे, कितने दिन करेंगे। देखो पुणात्माओं, आज गाने सुनते हो आप, या फिल्म देखते हो टीवी पर या मोबाइल में, या बकवाद देखते हैं सुनते हैं किसी चुटकले वगैरह, घर में एक दुर्घटना घट जाए, आप सुनकर दिखाइए उसने, वह फिल्म का गाना सुनकर दिखाइए फिर। तो ऐसे गंदे लोक में हम ये गाने सुने और सुनाएं, गाने गाएं, यहां तो रोना पीटना है सबका। और इसमें भगवान की भक्ति साथ लेकर और इस मालिक की आरती दिन रात करो, भगवान की भजन दिन रात करो। ठीक है कोई दुर्घटना घट भी जाए तो मालिक की भजन नहीं छोड़े, आरती इसी तरह करता रहे, इसमें बिल्कुल बंद नहीं करें, क्योंकि दुख हल्का भगवान ही कर सकता है, उसको रोते रोते भी मालिक ने याद करे। तो कहने का भाव यह है कि इस गंदे लोक में हम भूल जाते हैं, किसी के घटना घट गई, हम एक औपचारिकता करने जाते हैं वहां पर, अगर वो हमारे आया था और हम नहीं गए तो वो दुख मानेगा। बस वहां थोड़ी सी देर में पूछ लेते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, बाहर आते फिर वो सैर सपट्टे अपने जो के तोड़े थे, जिसके लागे सो तन जाने, और यह सब के लगेगी, किसी के पहले लग जाएगी, किसी के बाद में लगेगी, या तो कोई नहीं बचेगा इस मार से, काल के कोल्लू में सब पड़े हुए हैं, और एक दिन इसके पाट के नीचे आपने आना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई, चक्की के बीच में चक्की चल रही है पत्थर की, उसमें कणक डाली जा रही है, कहते दो पाटों के बीच में, इस काल और माया के बीच में आपको पीसा जा रहा है, इसमें साबित कोई नहीं बचेगा। फिर कहते हैं कि किले से लागा रहे ताका नाश न हो। हमने देखा कि हमारी माताएं हाथ से चक्की पीसा करती थी और उसमें किला होता था, किला बीच में एक ऐसे दोनों पाटों के बीच में सेंटर में पाट होते गोल गोल चक्कर पत्थर के, उसमें एक तो डंडा सा लगा होता था उसको घुमाने के लिए, एक उनके सेंटर में एक सुराख सा होता था, उसमें एक लकड़ की ऐसे गोल सी लंबी लंबी सी एक लगी हुई थी गुटका सा, और उसके चारों तरफ उसके खाली स्थान होता था, उसको किला बोलते थे। अब जो कणक उस किले में पड़गी वह तो ज्यों की त्यों रहती थी, उस पर उन दोनों पाटों का असर नहीं होता था, और जो उन दो पाटों के बीच में आगे वो सारी पीस दी जाती थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं किले से लागा रहे ताका नाश ना हो। तो हम परमेश्वर कबीर जी के साथ लगेंगे, ये किला है इस काल के चक्की के बीच में, और जो परमात्मा के संपर्क में इसके निकट आ गया फिर काल के इस पत्थर यानी दोनों पाटों से बच गया। तो जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आप आ गए तो आप उस काल के कोल्लू से, उस चक्कर से यानी पिसने से बच जाओगे। तो प्रश्न चला था कि हम परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो परमात्मा ने ये आग पहले नहीं लगने दी, शिक्षा की, और कितना प्यार, कितनी आधीन्य, कितनी विनम्रता। और जितने हम विनम्र होंगे, आधीन होंगे, अहंकार रहित होंगे, उतना भगवान हमारे निकट आओगा। आदिनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो भाई बे अदबी सिर काल। अब जितने हम विनम्र रहेंगे परमात्मा उतना ही साथ देगा, हम अहंकार प्रयोग करेंगे भगवान कोसों दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा से लाभ लेने के वो सभी फार्मूले अपनाने पड़ेंगे जिससे हम परमात्मा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। अब जो प्रसंग चला था कि इस 21 ब्रह्मांड में परमात्मा कहते हमने कोई सुखी प्राणी नहीं देखा, कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, जिसको घाटा माने हानि होगी, लॉस हो गया बिजनेस में या कोई खेती हानि होगी, फसल नष्ट होगी, वो तो आप पे दुखी, और जिसने लाभ हो गया वो और घना दुखी। लाभ होते ही मान ले किसी ने 5 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया, वो यो काल इतना जबरदस्त उसको भ्रमित करता है, वो 20 लाख रुपए का कोई काम शुरू करेगा, कितने तर लोन वगैरह लेकर, 5 तो वो लाओगा 15 और लेगा कितने तो उधार लोन ब्याज पे, और वो बिजनेस हो जाएगा फेल, वो 20-5 तो वो गए 15 और उधार, वो आगा आगर मांगनी है पीछे पीछे काटे चक्कर फिर। तो कहने का भाव ये है इन बकवादों को छोड़कर भक्ति विधि अपना के अपना पीछा छुड़वा लो। इतनी सी बात है, परमात्मा 120 वर्ष तो पहले कह के चले गए, अब वो एक अपना एफिडेविट छोड़ गए, अपनी वाणी छोड़ गए भगवान विधान बना के, आज ये दास 20 वर्ष से ये दास लग रहा है इसी को समझाने और बताने के लिए। और जब तक हम इस विधि को नहीं अपनाएंगे ना तो यहां सुखी हो सकते, और भविष्य तो भूल जाओ, सुख स्वप्न में भी नहीं होगा। जब परमात्मा की सही विधि, सही भक्ति और उसकी मर्यादा पर हम चलेंगे, हम यहां भी सुखी होंगे। पुण्यात्माओं, एक दिन दास वहां गया हुआ था गोवा के अंदर, गोवा एक स्टेट है और समुद्र के किनारे बसा हुआ है, वहां भगत ने एक सत्संग करवाया था, सत्संग करने गए थे सन 2004 में, और वो सत्संग भी उस समुद्र के किनारे से थोड़ी सी दूरी पर, यानी वहां से 8-7 किले दूरी पर, 1000 फुट दूरी पर एक ग्राउंड था, वो बुक करा रखा था। सत्संग समाप्त करने के बाद शाम को टहलने के लिए चले गए, और सुबह भी फिर उधर ही घूमने जाते थे, तो क्या देखा वहां पर, ये फॉरनर विदेशी लोग अपने परिवार सहित उस समुद्र के किनारे रेत के अंदर लौट रहे हैं और रेत को लगा रहे हैं, और वो बता रहे थे कि ये कह रहे, अंग्रेजी में बोल रहे थे, कहा बड़ा आनंद आ रहा है, यहां पूरी शांति मिलती है। और फिर उनके बारे में ये भी बताया गया कि ये वहां अरबपति हैं, अरबपति, इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है, इनके बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी कार हैं, एक एक करोड़ की कार है इनके पास। और उन महलों को जिसमें ये करोड़ों रुपये की कोठी बनाकर करोड़ों रुपये की कार लेकर, वहां शांति नहीं, शांति मिली वहां कपड़े निकाल के एक लंगोट बांध गए, रेत में पड़े हैं। उन्होंने कहा हा यहां बड़ी शांति है, इन कोठिया ने शर्म मारोगे जहां शांति नहीं, चाट लो उन कोठिया ने जहां शांति नहीं। तो पुण्यात्मा ये हालत है हमारी, शांति तो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के और हल्का बनकर इन कार कोठी और समाया में कभी सपने में भी शांति नहीं होगी। और शांति नहीं है तब बाढ़ में जाओ, वो धन जिसके से अरबपति और चाहे खरबपति, जब आत्मा में शांति नहीं, वो तो आज भी आग में जल रहा है, फिर सारी संपत्ति ने छोड़कर फिर नरक की आग में न्यारा जलेगा। वो यहां भी दुखी, उसका परलोक भी दुखी है। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि घाटे बाद सब जग दुखिया और के गृहस्थी बैरागी हो। जो घर छोड़कर चले गए, बैराग ले लिया, जंगल में जा बैठे, अब वहां जाकर जंगल में बता कोई बात है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी हमारी। अब जंगल में कोई भगवान की तरह पेड़ का बांध रखे आके जाते खोल लाऊंगे, ये अकल देखो। पर आत्मा है ये, भगवान के लिए रुक नहीं सकती, जैसा भी इसको गाइड मिलता था ऐसी या अपनी स्व प्रेरणा से भाग लेती है। अब घर त्याग दिया, जंगल में पहुंच गया, ठीक है, रोटी खा कर गया होगा सुबह सुबह, तो शाम तक तक कोई दिक्कत ना, लेकिन शाम ने भूख फेर लगेगी, रात काट लेगा जैसे तैसे, सुबह नहीं होगी उस पर, सुबह फिर भागेगा, भागेगा कहां, गृहस्थियों की तरफ, गांव नगर की तरफ, डीएमआई डीएमआई वहां से मांग कर फिर जंगल में बैठ कर खाई। और फिर वर्षा होगी तब उसको महसूस होगा भी बहुत दिक्कत आई है, फिर एक झोंपड़ी डालेगा, सर्दी लग गएगी तो कोई कंबल मांग के ले आओगा किसी से, फिर के छोड़ा वह भी चिंता, वहां नौकी नो बनगी और फालतू ज्यादा बनगी। वहां बड़े बनाए मकान थे, बड़ी बनाई रजाई कपड़े थे और बड़ी बनाई रोटी मिलने थी, वहां ना भक्ति करेगी, वहां जा बकवाद करी, इस ऐसे भगवान मिलेगा। तो कहने का भाव ये है, बगैर ज्ञान के हम डले ढोरे थे और गृहस्थी न सोचने लगे कि ये जो बाहर बैठा जंगल में तपस्या कर रहा है यू पाओगा भगवान। तो परमात्मा के पाने का विधान विधि हमारे सदग्रंथ बताते हैं और खुद भगवान बताते हैं, या जिन्होंने परमात्मा पाया वो संत महापुरुष बताते हैं, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा बताया उन्होंने जो विधि अपनाई वो हमारे सदग्रंथों में ज्यों की त्यों है, वही विधि उन्होंने अपनाई उनको भगवान मिला, और जिन्होंने वो विधि नहीं अपनाई अपने सदग्रंथों वाली उनको भगवान नहीं मिला। इसलिए आज तक भगवान को निराकार निराकार कहते रहे, रामकृष्ण को भगवान मानते रहे, भगवान तो कबीर साहब थे, आज तक किसी ने बताया भगवान कबीर साहब है, ये कबीर पंथी भी कहते कबीर साहब तो अलग है और परमात्मा न्यारे है। इनकी विधि थी नहीं जो भगवान को देख सके और पा सके। तो कहने का भाव यह है दास का कि परमात्मा पाने के लिए भगवान ने स्वयं एक रोल किया, भूमिका की। परमात्मा कहते हैं जो सुख है गरीबी में वो ना ही रे अमीरी में। गरीबी यानी आधीनी, और साई इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जा। इसमें जो सुख है और भगवान की भक्ति साथ हो, देखो भगवान की भक्ति नहीं है तो चाहे वो हैंड टू माउथ वैसे भी रह लो उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। भक्ति भगवान की साथ हो और भगवान का फिर सहारा आपके साथ रहेगा, आपको आवश्यक वस्तु आपके सोचने से पहले प्राप्त हो जाएगी जब हम भगवान परमात्मा कबीर जी की शरण में विधिवत रहेंगे। तो फिर हमने घने संग्रह संचन की आवश्यकता क्या, लेकिन हमारा जो है दिल इतना कमजोर हो लिया हम संग्रह क्रिया बिना रुक नहीं सकते। फिर परमात्मा ने बताया कि जैसा भी जिसकी व्यवस्था है उसी में इस भगवान की भक्ति को प्रारंभ करो, ज्ञान को सुन और इस पर कुछ कदम इसके अनुसार रख कर देखो, फिर आपको शांति भी होगी, घर में बरकत भी होगी, पापों से भी बचोगे। अब परमात्मा एक झोपड़ी में रहा करते सारी ब्रह्मांड के रचने वाले, वो एक शब्द से और एक सेकंड में इतना अलीशान मकान बना सकते हैं, एक वचन से, जिसके वचन से सब ब्रह्मांड और सब सूर्य और ये चांद सितारे बन गए और ये सब जीव जंतु ये पौधे परमात्मा के एक वचन से बाग लग गए, तो क्या वो अच्छे महल बनाकर नहीं रह सकते थे इस पृथ्वी पर? काशी बनारस में वो जुलाहे का काम करके क्यों दिखाया उन्होंने, क्यों एक झोंपड़ी में टाइम पास किया कि बच्चों आपको बस इतना ही पर्याप्त है इस गंदे लोक में, इस काल की जेल में तुम बड़े बड़े व्यवस्था करने चाहते हो तो तुमने भांग पी ली। आपको ये जेल महसूस हो नहीं रही क्योंकि आपको नशा करा दिया इसने। अब ये परमात्मा का ज्ञान एंटीबायोटिक काम करेगा, ये आपका नशा उतारेगा और फिर आप होश में आओगे, फिर आपको यह जेल दिखाई देगी। जब आपको ये जेल दिखाई देगी तो इससे निकलने की आप चेष्टा भरसक करोगे। और अब परमात्मा ने बता दिया, चेष्टा की तरीका बता दिया कि ऐसे प्रयत्न कीजिए और गारंटेड मोक्ष होगा, गारंटेड मोक्ष होगा, ये भगवान की बताई वाणी। तो क्या बताते हैं कि हम समझा करते जो जंगलों में चले गए और धोने लगाकर आग अग्नि जलाकर बैठे हैं, आसन पदम लगाकर गृहस्थी ये सोचा करते थे भगवान तो ऐसे मिलेगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम बच्चे नहीं छोड़ सकते, ना इतना समय हम निकाल सकते, इसलिए हमने भगवान को खोजना बंद कर दिया। क्यों? इस तरह दड़े ढूंढे नहीं और भगवान मिले नहीं, फिर भी दुख होता था, अपनी छोटी मोटी क्रियाएं भगवान की करते ही रहते थे क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। ये मन है ये बकवाद करवाता है, इसके साथ इसका जोड़ा कर दिया काल ने कि इसको भ्रमित रख, इसको भयभीत रख, तेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वहां सत्संग में गया तो यहां पीछे से हानि हो जाएगी, इसको ऐसा भयभीत करके वही बैठा लेता है, यहां नहीं आने देता और वहां रहते रहते सारा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है। तब कौन सी रक्षा कर ली आपने? रक्षा करने वाला भगवान, इससे आप दूर कैसे बात बनेगी आपकी? अब जैसे एक बार ये दास जब ये दीक्षा ली थी, ये ज्ञान समझ में आया था, सर्विस भी करता था, तो जब ये ज्ञान समझ में आता तो अपने साथी कुलिक को सभी को जो भी संपर्क में होते हैं ज्ञान सुनाना हमारी मजबूरी बन जाती है और जरूरी बन जाता है। ऐसे ऑफिस के अंदर दास ने जिक्र किया तो एक हमारा जो साथी था वो कहने लगा, भाई आपने संत तक देखे नहीं है, मां भी कैसे कि एक बार मैं चला गया हरिद्वार और आगे पहुंच गया ऋषिकेश, ऋषिकेश की झाड़ियों के अंदर मैं घूमता घूमता गया, आगे क्या देखा कि 10-20 व्यक्ति बैठे एक वृक्ष के नीचे और जंगल की तरफ टकटकी लगाए बैठे। मैं वहां गया, उनसे पूछा यहां क्या देख रहे हो? उन्होंने बताया कि यहां एक महात्मा रहता है, बड़े संत पुरुष हैं और केवल एक केले के पत्तों को लंगोट के स्थान पर बांधते हैं पर्दे पर और ना नगर में आते ना बस्ती में, इस जंगल में घूमते रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं और उसके दर्शन यदि हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक उन्हीं में से कह रहा था, एक दिन मैं यहां सुबह सुबह वक्त से आ गया और मैं ऐसे ही देख रहा था, उस महात्मा ने मुझे देख लिया, वो मेरी तरफ ही आ रहा था, मैं उसको नहीं देख सका, वो मुझे देखकर वापस भाग लिया। मैंने उसकी पीठ पीठ देखी थी, जब चेहरा देख लेता था दर्शन हो जाते थे, बेड़ा पार हो जाता। अब मुझे तो मालूम था कि उनको आगे बात बढ़ाना मैंने उचित भी नहीं समझा, मां भाई ठीक है। अब इतने रंगमर रंगे हमने कक्का पता नहीं, अब इसके विषय में सुख संवेद में क्या बताया है कि डंब करें डूंगर चढ़े। एक समय दास अपनी ड्यूटी पर जा रहा था मोटरसाइकिल पे, और उसमें क्या देखा कि एक ऊंचा सा स्थान था गांव से बाहर, ऊंचा टीला ऊंची स्थान थली सी थी, उस पर 10-20 वृक्ष थे और नीचे एक तालाब था। वहां एक संत बैठा साधु दोना लगा के, और कई भक्त उसके चारों तरफ गांव के लोग बैठे, कोई जा रहा था। तो हमने पूछा भी ये कौन है कि बड़े पहुंचे महापुरुष संत बाबा तपस्या कर रहा है, और दूर तक दिखे साफ हो बैठा। मां भी ठीक है, तब तक हमने नाम लिया नहीं था। अब नाम लेने के बाद परमात्मा के ज्ञान के प्रकाश में दिखाई दिया, वो तो डड़े डोए था, पशु था। क्या बताते हैं कि डंब करें पाखंड करें, डंब माने पाखंड, डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने उच्च स्थान पर बैठेंगे, न सब न दिखूं तपस्या कर रहा हूं। डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे यो बोवे सूल बबूल। जो साधना ये संत ऋषि महात्मा, हम जिनको महात्मा मानना करते, जो ये साधना भक्ति कर रहे हैं, कोई है प्रमाण किसी संत ग्रंथ में या किसी महापुरुष ने किया जिसने भगवान मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, ये पहुंचे हुए संत थे, परमात्मा पाया था इन्होंने। इन्होंने किए कभी ऐसे साधनाएं? और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गृहस्थी अरिन गोपाने के लिए जंगल में लंगोट बांध के बैठे ब्रह्मचारी बनके, हद होगी हमारी बुद्धि का, पत्थर पड़ गए थे, कति ज्ञान नाम की चीज नहीं थी हमारे पास। अब क्या बताते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे यो बो असूल बबूल। अब ये तो ड्रामा करते हैं कलयुग के, जो कर रहे हैं सुबह जैसे गर्मियों के दिनों में 40 दिन तक 5 दोने लगाओ के बीच में बैठ गया, 40 दिन में होगी अमर काया, वाह भाई वाह, या फिर झरना बैठ गए, कहते ये तो है एक ड्रामाबाजी। और पहले ऋषि महर्षि तन मन धन से भक्ति करते थे, हजारों वर्षों तक उनकी लंबी आयु होती थी, तपस्याएं करते थे, उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये परमात्मा प्राप्ति का साधन ही नहीं है। इससे क्या होता, तप से राज मिलता है, तप से राज, राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र समानम, जैसे सदग्रंथों में भी लिखा है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तपेश्वरी तपेश्वर, तपेश्वर यानी तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ, घना तपस्या करने वाला वो राजेश्वरी, वो राजाओं में सबसे ज्यादा ताकतवर और धर्मान राजा होगा, और जितना ज्यादा अक्षेत्र जिसके पास होगा वो ताकतवर माना जाता है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, इतना नरक उसने घना मिलेगा, वो नरक में भी सबसे आगे पड़ा पाओगा, सबसे ज्यादा समय तक रहेगा, वहां भी नरकेश्वरी होगा वो। तप से राज, सूक्ष्म वेद में लिखा है, तप से राज और राज मदमानम, और जन्म तीसरे वो शुक्र सवानम। तप से राजा बनेगा, राजा में अभिमान होता है, वो उल्टे कर्म करते पीछा नहीं देखता, अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपनी प्रभुता बनाने के लिए दूसरे राजाओं पर चढ़ाई कर लेते हैं, उनके राज्य को हड़प करने के लिए, और ना जाने कितने नौजवान बच्चों को मरवा देते, सैनिकों को। और फिर आप कहां गए, कहां उनके राज, आज गधे बनकर घूम रहे हैं वो, कुत्ते गधे सूअर की योनि में राजा लोग, ये अनमोल मनुष्य जीवन ये डड़े डोण के लिए नहीं मिला था, ये बकवादों के लिए प्राप्त नहीं हुआ था। ज्ञान ना होने से हम इस काम लाग गए, भगवान तो मिला ही नहीं। जब भगवान नहीं मिला तो फिर बकवादों में लगेगा। जैसे गाय के बच्चे को जब वो माँ का दूध पी रहा होता है तो क्या करता है धनी, उसको माँ का सतन छुड़वा कर अपने हाथ की उंगली दे देता है दो मुख में, और वो थोड़ी देर तो उसको ऐसे ऐसे मारता चूसता रहता जैसे दूध होगा इसमें, वो उसको धीरे धीरे ले जाकर खुट्टे दबान देता है रस्से ते, और वो थोड़ी देर तो उसको चूसता फिर वो छोड़ देता है, क्योंकि उसमें तो वो आनंद आ ही नहीं रहा जो माँ के सतन में था। फिर वो क्या करता, या तो ऐसे 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 करता या फिर उसमें उस द्वार का शर्मारण लग जाएगा या कूदन लग जाएगा। यानी जब उसको आनंद आ रहा था तब तो निश्चिंत वो आनंद ले रहा था, और जब वो छूट गया तो आनंद जिसको उसने उंगलियों को सतन मान कर थोड़ी देर तक चूसा वो छोड़ दिया, क्योंकि उसमें वो आनंद नहीं, फिर लग गया टक्कर मार द्वारों का। तो हमारे साथ वो बन गई, हम पहले तो भगवान की तरफ लगते हैं, भगवान को पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, घर भी त्याग देते हैं, लेकिन वो वस्तु नहीं मिली हमें जिससे भगवान का आनंद मिले। हमने ये नकली साधनाएं तो मुंह में उंगली दे रखी थी, या कितनी देर आनंद देगी। अंत में इसको छोड़कर हम फिर बकवादा बढ़ गए, सिद्धियां प्राप्त कर ली, एक दूसरे पर प्रभु पा गए, फिर पता नहीं क्या क्या उदमस्तारण लाग गए, सब कोठी बनाने पर लाग गए, फिर वो भूल गए सारा साधन, क्यों भगवान मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने सतन नहीं मिला माँ का, हम उंगलियां घूम लिए फिरे थे। तो जितनी साधना है इस दास के अतिरिक्त, तो साधना दास बताता है, ये सारे ऐसे ही मुंह में उंगली दे रखी इन संतों ने, इनको मूर्ख बनाने के लिए श्रद्धालुओं को। ये कभी वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, यानी मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, वो यहां होगी सतलोक आश्रम बरवारा जिला हिसार में, इस दास से भक्ति विधि प्राप्त करके। तो क्या बताते हैं, केले की कोपीड है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते वो बस्ती डकट ना जाही, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दन फिरो उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। कितना सिंपल साधारण तरीके से बता दिया कि केले की कोपीन कोई संत बांध रहा है, यानी केले का पत्ता पर्दे पर बांध रखा, वस्त्र नहीं पहन रखे, और पत्ते फूल फल खाके और जंगल में रहता है और बस्ती के निकट भी नहीं जाता, आदमी का मुख भी नहीं देखता, उनसे दूर भाग जाता है। जैसे कहते हैं केले की कोपीन है जो फूल पत्ते फल खाई और नरक का मुख नहीं देखते, उस संत के बारे में वो यही बता रहा था कि वो आदमी के दर्शन नहीं करता ना दर्शन देता, नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही, वो तो जंगल के रोज हैं, ये नील गाय है, वो धके खान दिया अंडे सारे दिन नील गाय, उन्हें मिल गया भगवान, अर्चे निस्तिन फ्रो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। फिर क्या बताया कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुशरे लहन मोक्ष, और ध्रुव पर लाद जब पार हो गए तो फिर गृहस्थी में के दोष। कितना साधारण तरीके से हमारा जो अज्ञान अंधेरा साफ किया भगवान ने, कि आप जी ध्रुव जी को प्रहलाद जी के तक खूब गुण गाते हो कि मुक्ति प्राप्त कर गए, ये क्या थी। ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में घर छोड़ गया था और इसने परमात्मा मिल गए जो इन्होंने, क्योंकि ये पिछले ही अब ध्रुव को तो मिल गए और लाखों वर्ष बैठे उन्हें ना मिले। कहने का भाव ये है कि पिछले जन्म जन्मांतर से कोई साधना करता हुआ आ रहा था और उस साधना के कारण कौन मिला, इसको विष्णु आ गया, और विष्णु से इसने क्या मांगा, मुझे अटल राज दे दो, तो इसे नाराज दे दिया क्योंकि इसका वर्क डन मिल गया, मोक्ष नहीं हुआ, भगवान से दौरे बैठा रहा। जब तक सतलोक नहीं जाएंगे इतने उस भगवान के मिलने का लाभ क्या हुआ। 120 वर्ष परमात्मा यहां रहे, काशी में ना जाने कितना देखे, और भगवान शंकर और पार्वती इकट्ठे रहा करते। जब तक नाम नहीं ले लिया पार्वती ने, उसकी उतनी भी राहत ना मिली जो उस मंत्र से मिलनी थी जो शंकर जी देते। तो भगवान के मिलने मात्र से मोक्ष नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि ध्रुव ने फिर राज्य किया, विवाह किया, और उसके जो मौसी का लड़का था उत्तम वो मारा गया था, उसकी पत्नी भी उसी के साथ रही। उसके बाद प्रह्लाद ने ब्याह किया, संतान हुई बलि राजा, जिसने 100 यज्ञ किए थे, 100 मन की, जिससे वो इंद्र की गद्दी प्राप्त करना चाहते थे, जिस कारण से भगवान बावना रूप बनाकर आए थे। वो बलि जो है प्रह्लाद का पोता था, और बैलोचन उसका पुत्र था प्रह्लाद का। तो प्रह्लाद ने ब्याह करवाया, ध्रुव ने ब्याह करवाए। तो यहां परमात्मा समझाना चाहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, डेरा माने घर। कई ये कहते हैं कि गुरु जी ब्रह्मचारी हो और चेले चेले गृहस्थी हो, वाह रे शेरो। अब भक्ति तो देखो दोनों करनी पड़ेगी, गुरु जी ने भी और चेले ने भी, और एक जैसा। और ठीक है, जो ब्रह्मचारी रहना बुरा नहीं, और केवल ये कहना कि ब्रह्मचारी ही गुरु हो सकता है, ये मूर्खता है। परमात्मा विधि विधान से मिलेगा, उसको कहते परमात्मा कहते हैं, अगर तुम यही मानते हो कि बाल ब्रह्मचारी रहे और जंगलों में रहे और तभी भगवान मिलेगा, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लहना मोक्ष, ये हिजड़े पार ना होते। अगर केवल ब्रह्मचारी रहने मात्र से ही तुम मानते हो मोक्ष हो जाएगा, तो इन खुसरों का नंबर तो आप तो पहले आना चाहिए था। और फिर कहते हैं गुरु पर लाज भी पार हो गए तुम कहते हो, तो फिर गृहस्थी में के दोष। अब परमात्मा का कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि खुसरे मोक्ष नहीं पाएंगे, यानी मुक्ति मनुष्य जीवन हो चाहे वो खुसरे हैं, ये भी तो मानुष है, इनमें सब बुद्धि है और स्त्री है पुरुष है, इस विधि से मोक्ष प्राप्ति होगी, होगी मानव शरीर में। तो परमात्मा ने यह बताना चाहते, जैसे परमात्मा कबीर जी ब्रह्मचारी थे, वो तो मालिक है, उनको तो ये वासनाएं निकट भी नहीं है, लेकिन एक गृहस्थी क्रम करके दिखाया उन्होंने। 2 बच्चे मुर्दे जिंदे करे थे किसी कारण से, किसी की शर्त पे, और 2 मात पिता थे, वो बोले जन्म नहीं था मालिक का, वो निरुनिमा उठा लाए थे दाता को जब सतलोक से आकर कमल के फूल पर विराजमान हुए थे लहर तारा तालाब में। तो ये परिवार था दाता का, और परिवार में रहे, परिवार गृहस्थी का वाला कर्म किया, सारा कपड़ा बुना करते थे और भगवान की भक्ति भी करते थे, परिवार का पोषण भी करते थे, भक्ति भी करते थे। करते थे का मतलब हमें दिखाते थे कि भक्ति करनी पड़ेगी, और इतना भी गुजर मालिक दे दे तो भी पर्याप्त है, यहां से पीछा छुटाने के लिए इन बकवादों से उल्टा हटना पड़ेगा। कोठी बना लो, फैक्ट्री ला लू, यूं कर दो, फलान कर दो, ये नहीं। परमात्मा ने जो भक्ति करनी है तो भगत की तरह रहना पड़ेगा, बुराइयों से भी बचना होगा और एक बहुत ही साधु भाव में रहना पड़ेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखावे। ठीक है, आपको धीरे धीरे सेट होने में टाइम लगेगा, जैसा भी जिसका व्यवसाय है अब वर्तमान में, उसमें एक साधुता लाओ। जैसे कोई मजदूर है सेवा कर रहा है किसी के, और भगत हो गया तो वो तन मन अंतर सेवा करे उस मालिक के उसमें, क्योंकि वहां से उसने रोटी मिल रही है। और फिर परमात्मा ऐसी प्रेरणा करेगा उस मालिक के अंदर, देख भगत आदमी होते ऐसा हो भाई, कोई चीज पड़ी रहो घर में उसके लिए मिट्टी समझे, चाहे पैसा हो चाहे सोना हो कुछ भी हो, अपनी मिली हुई 2 रोटी यानी 2 जो दिहाड़ी मिलती है उसमें संतोष सबर करके देखा कितनी इज्जत बनेगी उसकी, और कितनी विनम्रता और उसके प्रति सद्भावना और उसका आदर बनेगा उस मालिक के हृदय में। इसी प्रकार अगर आप मालिक हैं, भगत हैं, आपके यहां कोई सेवादार सेवा करता है, उनको अपने बच्चों की तरह समझें, उनको भगवान के बच्चे समझें। वो बालक सेवा कर रहे हैं, भगवान के बच्चे हैं, उनको प्यार दे और उनके साथ कोई ऐसा गलत बर्ताव नहीं करे। और फिर कुछ दिनों में उनके दिल में ऐसी भावना होगी, परमात्मा दोनों तरफ रोल करता जब हम माल्य के अनुसार चलेंगे, फिर उन बच्चों में भी, उन सेवादारों में भी ऐसी भावना भर देगा भी हमारे जैसा नालायक नीचे इसे ऐसे भले आदमी के घर में रामून से 21 कराएंगे, सेवा में मजदूरी में 21 काम कराया करेंगे वह। तो इस तरह कितना अच्छा माहौल बनेगा। और हम जैसे जैसे मालिक तो समझता है कि ऐसे जो 100 रुपये और काम खेचू 1000 का, और मजदूर क्या समझते हैं, रुपये लेवा 500 और काम करा 100 रुपया का, दोनों की नीत खराब और दोनों दुखी, कर्म भी बिगड़े, टेंशन बनी रहे। तो इस प्रकार हमने अपने इस अंतःकरण के अंदर एक साधु भाव लाना पड़ेगा, और तब देखना आपका वातावरण कैसे बदलने लगेगा, कैसे बदलने लगेगा, पूछो मत। तो तब हम यहां भी सुखी होंगे, आपको चिंता नहीं रहेगी कि वहां सेवादार सेवा कर रहे हैं, वो अपने तन मन धन से सेवा करेंगे भगवान से डर के, वो भगवान से डरने वाले हो जाएंगे, फिर बात तो खत्म हो जाएगी। अब तो आग लगी पड़ी है, रिश्वत ले ले, यूं ले लूं, फलान करूं, जब करूंगा तेरा काम, डर दे 500 रुपये, और उधर से 500 ले लिए, डॉक्टर के जाकर 1000 लग गए, वो 500 भी गए, 500 अपनी तनख्वाह में गए, अरे वो पाप कर्म जो कह दो धरे के धराए रह गए, फिर गदा बनकर पूरे करेगा जिससे रिश्वत ली है। तो इसी विघ्न में पैर दो मत, ये भगवान बताना चाहते। और जब आपको यो ज्ञान होगा ना, जहर दिखाई देगा आपको, और जब आप नेक नीति से चलोगे तो पूछो मत। अब दास बहुत देखता है, एक छोटा सा बच्चा ने बोला जी 55 रुपये पाए मैंने पड़े, वो घर पे लाया, घर वाले बोले ना बेटा हमने नीचे धर दे, अपना दान पात्र में डाल दिए, इस विषना हम नहीं खाएंगे। अब देख जिसके गिरे थे उसको पुनः हुआ, यहां पर भंडारे में लग गए, और वैसे उस पर चौनी खर्च हो रही थी कि उसने विधि का पता नहीं, और वैसे कोई और मिल जाता उसने जाते कह गुट्टी लाओ उसके 55 रुपये की, या कितने मांस मिट्टी खाओ उसको और पाप लगे हो। तो इस प्रकार हमारी नीत साबित होगी, भगवान खुश होगा, और जब भगवान खुश होगा तो फिर कमी नहीं रहेगी। हमने परमात्मा को प्रसन्न करना है, और परमात्मा प्रसन्न होगा तो फिर कमी किस चीज की, फिर तो क्या बताते हैं परमात्मा, साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जावे। इससे अधिक मांगना इस काल की जेल में हमारी महामूर्खता है, कि इतना ही मांग लो बस तुम, इसमें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में मशीनरी जरूरी होगी। तो आप इतना ही मांगो जामे कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं, ये है जामे कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जाए, फिर देगा आपको। और फिर रहो मालिक के वचनानुसार चलो, फिर कैसे, जैसे परमात्मा कहते हैं चेड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं यूं कह रहे साहेब कबीर। परमात्मा अपना साइन कर रहे हैं इस वाणी को बोल करके, कह रहे साहेब कबीर के दान करने से धन नहीं घटेगा, ये नियम है परमेश्वर का। और दान सुपात्र को करे, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। देते को हर देत है जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरो फिर साहेब सुने ना कान। अब परमात्मा ने एक भूमिका करके दिखाई हमारे को कि साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, एक धानक एक जुलाहा, सुबह से लेकर शाम तक एक बारीक बारीक तार इकट्ठे करके धागे और कपड़ा बुनता है, एक दिन में मुश्किल से भी 5 फुट 10 फुट बना पाता है, 5 फुट 4 फुट और बहुत लंबा सैकड़ों फुट का तार वो थान बनाना पड़ता है, ताना बनाते थे, वो हफ्ते में पूरा होता, उसकी जो मेन ताना मालिक को मिलता है उसमें से अपने परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री थी खाद्य पदार्थ लाते और शेष बच जाते उसको सत्संग और भंडारा में लगाया करते थे। इस प्रकार परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि इस लोक में आप भगवान की भक्ति अवश्य करो, पूर्ण संत से प्राप्त करके फिर परमात्मा एक्शन में आवेगा, और वैसे आप ये फार्मूले अपनाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आपके साथ काल रहेगा ये मन, और केवल वर्क डन मिलेगा आपको, यहां वर्क से भी अलग मिलेगा आपको, किस्मत से भी नारा देगा परमात्मा, क्योंकि हम परमात्मा से कुछ और मांग ही नहीं रहे, इतना ही मांगते कि हमारी भक्ति बनी रहे और हमें कोई आवश्यक वस्तु का अभाव ना हो, बस इतना सा। अब जैसे ये सोचते हैं अपने बच्चों के लिए ये बना दूं वो बना दूं, एक लाला जी था सेठ धनी, उसने अपने मुनीमों से एक दिन अपनी टोटल संपत्ति का, सारी संपत्ति का टोटल करवाया कि कितनी संपत्ति होगी, उन्होंने बताया जी इतनी होगी, मेरी कितनी पीढ़ी इससे निर्वाह कर सकती है। उन्होंने बताया कि जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठा खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास धन है। अरे भले आदमियों, फिर छठी क्या खाएगी, वो छठी क्या खाएगी, और कुछ विधि बताओ। तो उन्होंने कहा जी साधु संत बताते हैं, उनके सत्संग सुनने चाहिए। तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जब धन चाहे तो दान करे, और दान से धन घड़ा मिलता है, और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान कराया जा वो ज्यादा लाभ देता है, जैसे यहां तो सारे साधु संत आते हैं, भगत असली भगत तो यहां आते हैं, फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भक्त, तो पिछले संस्कारी होते, पिछले पुण्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं, लेकिन भविष्य का चरित्र उनके पास है नहीं, पिछले पुण्यों उनके पास है, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं, तो उनके पिछले पुण्य ही वहां फल रहे होते हैं, एकादे को आशीर्वाद दे दे उन्हें लाभ हो जाए, उसको रोटी मिल जाए, ऐसा चल रहा था इनका काम। तो एक साधु था और पति पत्नी थे दोनों, वहां रहते थे, उनको मालूम था यहां भगत हैं। तो उस लाला जी ने क्या किया, सेठ ने सभी मुंशियों को कहा कि नौकरों को साथ लो और आसपास जितने भी साधु संत हैं सबको आटा दे आओ, किसी को जो मांगे खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए, उन्होंने कहा कि ले भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि दाल आप ले लो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना कितना सामान अपने पास है। उसने कहा जी शाम का है, दिन दिन में गए थी, शाम का हमारे पास है, शाम का है। कहा जी, उन्हें कह दिया भी हम नहीं लेते, हमारे पास शाम का सामान है। तो उस कहने लगे भगत, फिर कल कल भी खा लियो, बोला कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं ले हम। बोले कमाल की बात है, उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए। वो सेठ ने पूछा तुम देखे क्यों नहीं आए, वो एक और वहां भी था, उसने गिण रखे थे, सारे गिनवा रखे थे। उसने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि श्याम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का सिकरो गुब्या फिर दिमाग का, अरे तेरा गजब हो, मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूं सुबह की भी परमात्मा पे छोड़ दी। वहां से चलकर वहां आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे भूखे। वो कहने लगे भूखे मरा करें, वो जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, और हमें भगवान आगे से आगे देखता, उसने क्योंकि ज्ञान सुन रखा था, लाला जी को बैठा लिया। कहते मां के पेट में जब आप थे किसने चिंता थी तेरी, ज्ञात बात सही है, जब आप मां के गर्भ से बाहर आए आपका दांत नहीं थे, आप रोटी चावल आटा नहीं खा सकते थे, और उससे पहले आपकी मां के सतन में दूध भी नहीं था, हक नहीं था, बाहर आते ही बालक कितना चिंतित है, आपको अमृत दूध पिलाया, अरे तू ठेकेदार हो रहा छठी पीढ़ी का, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी लाला जी, और गधे की योनि में जागा तू। तेने बोला जी कि एक रूम तो मेरे ज्ञान के एक रोली कोड इकट्ठा कर लिया तेने, पाप का भागी तू होगा, खांगी तेरी पीढ़ी, वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगी, तेरे भरोसे नहीं है, अब क्या करूं मैं तो मेरे ज्ञान। बोला इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी। तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा तेरा। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, हम तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लाए बैठे हैं, एक पल का भरोसा नहीं। देखो अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा, और जिस स्पीड पर आप चले इसका कोई अंत नहीं। आज किसी के पास एक प्लाट है और थोड़ा सा जुगाड़ होते नहीं, सोचे एक और लू, और फिर और जुगाड़ हो गया तो एक और लू, वहां थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, रेट ज्यादा होने वाले हैं, वहां भी दाव लग गया तो 30-34 और दूसरे शहर में ले लू, इतने मृत्यु हो जाएगी, और फिर कुत्ता बनकर वहां घूमया करेगा सैर सपट्टे करता। यह बात आपने याद रखनी पड़ेगी, 101% सत्य है। अब जो आपको दास ने परमात्मा की वाणी सुनाई थी कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी बपरीती हो, अब सुरपति देवताओं का राजा इंद्र बहुत दुखी, इसका इतिहास पढ़ के देखियो इंद्र का पुराणों में। कहते हैं एक बार एक ऋषि ने इसको श्राप दे दिया इंद्र को, उसका स्वर्ग उजड़ गया और इंद्र मांगता फिरा जंगल में धक्के खा रहा, और फिर कभी देखते हो राक्षसों ने चढ़ाई कर दी, देवताओं का राक्षसों का लठबाज रहा है, झगड़ा हो रहा है, और मृत्यु के बाद फिर इंद्र गधा बनता गधा। तो यहां कहते सुरपति दुखिया भूपति, सारी पृथ्वी का राजा भी दुखी, और रंक दुखी बप्रीति हो, निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, उस पर सारी आपदाएं आती ही हैं जब तक वो भगवान की शरण में नहीं आता। जब वो परमात्मा की पावर से जुड़ जाता फिर रंक हो और चाहे राजा हो, परमात्मा तो उनको सब अपने हिसाब से डील करेगा। फिर परमात्मा कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। अब आपने मन जीतना पड़ेगा, जीती हो आपने मन जीती बनना पड़ेगा। कैसे, जैसे एक रंका और बंका नाम के दो पति पत्नी भगत थे और परमात्मा आए हुए थे। परमात्मा क्या करते हैं, आपको वेदों से भी प्रमाणित किया है कि जब चाहे कहीं पर भी एक साधु संत रूप बनाकर वो कुछ समय उस क्षेत्र में रहा करते, क्योंकि वहां उनकी कुछ पुण्यात्मा होती थी, उनको फिर से चार्ज करते थे, ज्ञान सुनाते थे, माया से हटाते थे और भक्ति में जोड़ के उनके पुण्य कर्म बनाकर वहां अंतर्ध्यान हो जाते थे। और उसी समय नामदेव जी महाराष्ट्र के अंदर, नामदेव जी छिप्पी जाति में ये भी प्रगट थे, ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही होते हैं जिनमें बचपन से ही परमात्मा की तड़प होती है। तो ओम नाम का जाप करते थे ओनली, और उसमें भी उन्होंने काफी चमत्कार दिखा दिए थे, लेकिन फिर परमात्मा आए और उस प्यारी आत्मा को समझाया कि इस ओम से ऊपर एक और मंत्र है, अकेले ओम का मंत्र तो इस ब्रह्म का है, और इस जेल से छूटने के लिए तीन मंत्र का जाप है, ओम तत् सत। और तत् और सत ये सांकेतिक है। अब नामदेव जी को काफी मालिक ने समझाया तब उनकी समझ में आई, फिर उनको सतनाम दिया यानी दूसरा मंत्र भी साथ दिया, फिर वो उसका जाप करने लगे। अब गरीबदास साहिब जी ने बताया कि नम छिपा ओम तारी, पहले केवल ओम में लौ लगा रखी थी, ओम में लगन थी और कोई जाप नहीं करता था, और पीछे सोहम भेद बिचारी, बाद में उन्हें सोहम का ज्ञान हुआ और सार शब्द इन दोनों से ऊपर है, सोहम ऊपर और है सत्सुकर एक नाम, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, और सार शब्द पाया जद वही आवागमन बहुर डावी, तब नामदेव जी का कल्याण हुआ। जब परमात्मा आए भी थे उनको सार नाम दिया नहीं था, मालिक समझाया करते थे, सतनाम प्राप्त था, लेकिन पिछले संस्कार इतने प्रबल थे। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे कहीं से और साथ में रस्ते में एक मंदिर था, मंदिर में ब्राह्मण लोग अपनी आरती उतार रहे थे और आरती उतार रहे थे, बड़ी लय से गा रहे थे, नामदेव जी के भी वो परमात्मा की आरती का धुन लगी, वो तो घंटियां बजा रहे थे, कोई ऐसे झालर पीट रहा था लगा रहा था, और उसने अपनी दोनों जूती निकाल ली, जूती होती थी, दोनों निकाल ली, उनको ऐसे बजाते हुए और वो आरती गाते हुए ब्राह्मणों के बीच में घुस गए भगवान के दर्शनार्थ मंदिर में। अब पंडितों ने देखा कि ये छोटी जाति का हाथों में जूते लेकर आ गया हमारे बीच में, इसने तो भ्रष्ट कर दिया भगवान के मंदिर को, और वो धुन में लगे हुए थे, उनको धकावे जावे नहीं, वो अपने मंडर उसको पकड़ कर जबरदस्ती घसीट कर और मंदिर के पीछे पटक दिया। वो वहां पड़े पड़े भी ऐसे आरती गा रहे और जूतियों से पीट रहे। परमात्मा ने वो मंदिर का मुख नामदेव की तरफ कर दिया, पंडित जी पिछली साइड में पिट जालर पीछे न खड़े। अब नामदेव जी चले गए रंका और बंका, और एक उनकी लड़की थी वंका। नामदेव जी रंका और वंका के घर अधिक जाते थे क्योंकि वो भी परमात्मा के शिष्य थे, जब परमेश्वर साधु रूप में वहां आ रहे थे गुरु रूप पर रहा करते थे, अस्थाई सटे उनका कुछ समय का था वहां पर। तो जो ही वो उस रंका बंका के घर गए नामदेव जी, और वो लड़की उन भक्तों की रंका और बंका की एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे अपने देसी औषधि बना के हल्दी हल्दी कूट के तेल में पका के। नामदेव ने पूछा बहन क्या कर रहे हो ये, वो कहने लगी भाई तेरे खोदे हुए खड्डे आट रही हूं। अक मैंने क्या कर दिया कि भाई तू कते नहीं मानता भगवान गुरुदेव जी कितना संकेत करते हैं, भाई तुम अपनी यह हंगामा दिखाया करो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करा करो, थारा बट्ठा बैठ जाएगा, पर भाई तुम बाज नहीं आता, और भक्तों की इज्जत रखने के लिए भगवान को दुख ठाना पड़ता है, तेरे को क्या जरूरत थी वहां उस मंदिर में घोषण की, जब तेरे को बाहर पटक दिया ना, भगवान की इज्जत का, तेरी इज्जत नहीं भगवान की इज्जत थी वहां पर, भगवान का नाम लेनिया नहीं रहे वो कोई, सबको पता था कि उसका भगत है, उस गुरु का परमात्मा नाम बदल कर वहां रह रहे थे, और क्या बनती बेरा तुझे, तेरे को जरा सी लगती है तू आंख नहीं खोलता, और परमात्मा ने तेरा मंदिर फेरा ना, उनके हाथों के चोट लगी, हाथ लाल हो गए, उनके जख्म हो गए, भाई गुरु बता रहे थे मेरे तीन बेटी, वो मानता कोई ना बहुत बार समझा लिया, आज उसने ऐसे ऐसे कर दिया, मैं वहां गया था उसका मंदिर फेर के आया हूं भक्ति की इज्जत रखने के लिए, और गुरु जी का हाथ जख्म हो रहे हैं, चाल दिखाऊंगी। अब वो लेकर गए पट्टी बांधी, नाम देव पड़ कर नाम रोने लग गया, महाराज मेरे से गलती होगी, बेटा भक्ति भाव में गुरु जी के आदेश अनुसार चलना चाहिए आपने, जी आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मेरे से माफ करो। अब उसको आगे भी पढ़ाई पढ़ानी थी, ये यहां इसको रोकना जरूरी था, अगले भक्ति देनी थी, सारनाम देना था, इन बकवादों में सारनाम थोड़ा ही फलेगा, चुप हो गया। अगली नहीं गलती करूंगा आगे से। अब कुछ दिन के बाद नामदेव जी ने परमेश्वर कबीर जी से, जो गुरु रूप में रहते थे, उनसे कहा, महाराज ये रंका और मंका जंगल से लकड़ी लाते हैं और इनको बेचकर गुजारा कर रहे हैं, बहुत निर्धन है, झोंपड़ी भी ढंग से नहीं है, इनको कुछ धन दे दो। परमात्मा बोले, भाई ये धन ना लेते, मैं देना चाहता हूं, ये नहीं लेते, इनको तो विष दिखाई दे है ये धन। तो नामदेव कि उनका थोड़ा सा ठीक गुजारा था, कहने लगे नहीं जी, थोड़ा बहुत तो गुजारा होना ही चाहिए इनका, कुछ तो दे दो। परमात्मा बोले, भाई ना लेते ये, क्योंकि गुरु जी को हम चाहे परमात्मा आ जाए, क्योंकि तो विभिन्न रूप में होता, तो हम बेसिक सारा कुछ मानते हैं, फिर भी निवर है, गुरु जी तो गुरु जी है। तो कहने लगे जी कुछ तो देना चाहिए इनको। अच्छा बेटा ले, आज देता हूं, तू मेरे साथ चल। अब क्या किया परमात्मा ने, अपनी सिद्धि शक्ति से गहने सोने के आभूषण अच्छे बनाए, चांदी के सोने के, और आ जा भाई इनके रस्ते में डाल देंगे, ठा ले जाओगे। हाँ जी सही बात है। वो लकड़ी लिए आ रहे थे, बंका पीछे थी, रंका आगे आगे आवा था, सिर पे लकड़ियों का बंडल था, वो 100 फुट पीछे थी, 100-150 फुट रंग का गा गया था। क्या क्या रास्ते में वो सोने के आभूषण डाल दिए, और नामदेव और परमात्मा एक झाड़ी के पीछे बैठ गए। अब जब वो निकट आया रंग का, उसने पीछे देखा कि मेरी पत्नी आ रही है, और पत्नी औरत के अंदर आभूषणों की घनी कसक होती है, और कहीं ये किसी का धन पड़ा देखकर नीत ना डबोले, डूब जा कदे अपना कर्म धर्म बिगाड़ ले, उस पर पैर से मिट्टी डालन लग गया। अब उसने देखा बंका ने क्या हो गया, पति के खड़ा क्यों हो गया, उसने ध्यान से देखा, कहा ये तो इस कारण से करे। वो कहने लगी, चलो चलो जी, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। उसके पास से दो दो निकल के देखा भी नहीं उसको। तब परमात्मा बोले, बोल भाई नामदेव, कैसे धुन ना लेते। अब नामदेव ने सोचा, भाई उसकी बुद्धि इतनी ही काम करे थी कि जी और कोई तरीका अपना लो। अच्छा भाई ले, और भी तू कहेगा मैं वो अपना लेंगे। एक दिन क्या था, सत्संग हो रहा था, परमात्मा सत्संग कर रहे थे, रंका और बंका ये दोनों सत्संग सुन चले गए, नामदेव भी वहीं बैठा था। उधर से क्या हुआ, वो लड़की घर पे थी और वो बाहर बैठी थी चारपाई पे, उस झोपड़ी में आग लग गई, वह दौड़ी दौड़ी आई लड़की के माताजी पिताजी, माताजी पिताजी कहा क्या हो गया बेटा, कि झोपड़ी में आग लग गई, सत्संग चल रहा था और वो बताने भाग गई। तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या जल गया, क्या बच गया, कि एक चारपाई बची है बाहर, बाकी सब जल गया, कि उस चारपाई ने भी उसमें गिरा वो बढ़ती आग में। राजा बेटी सत्संग सुन ले, मैं चारपाई ने ठोकर वह ना होती, तहर सत्संग में बाद ना आनी चाहिए बेटी, आग लगवाई झोपड़ी कह, इसने भी गिरा उसके मां, और यह झोपड़ी ना होती तो सत्संग में बाधा तो ना आती, तुमने ध्यान भंग कर दिया, इतना आनंद आ रहा था। तो कहने का भाव यह है पुणात्मा, फिर नामदेव की आंखें खुली, रतरा गजब ये भगत ऐसे होने चाहिए। और फिर परमात्मा ने इतना सुंदर मकान बना दिया उनका, कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा, 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे, तो हमने भगत बनना पड़ेगा भगवान से लाभ लेने के लिए, बकवादों से बात बने को नहीं। इतनी सी बात है। साईं इतना दीजियो हो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ने भूख जावे।